एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, हमारा अपना दिमाग।
हाँ, और सवाल यह है कि क्या ये वैसा ही है जैसा हम हमेशा से सोचते आए हैं? मतलब एक बार बन गया तो बस वैसा ही रहेगा हमेशा?
बिल्कुल, यही तो बड़ा सवाल है। और इसका जवाब, या कहें एक नई दिशा, हमें मिलती है मोहब कुस्तांदी की किताब न्यूरोप्लास्टिसिटी में।
न्यूरोप्लास्टिसिटी थोड़ा भारी शब्द लगता है सुनने में।
हाँ है थोड़ा, पर इसका मतलब बहुत ही कमाल का है। सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की वो काबिलियत जिससे वो लगातार बदलता रहता है, खुद को हालात के हिसाब से ढालता रहता है।
अच्छा, मतलब फिक्स नहीं है।
बिल्कुल नहीं, और इसीलिए आज इस पर बात करना जरूरी है। देखिए, हम सब नई चीजें सीखना चाहते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल।
कोई बुरी आदत है, उसे छोड़ना चाहते हैं, कभी चोट लग जाए तो उससे जल्दी ठीक होना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि उम्र बढ़े तो भी दिमाग तेज रहे।
सही बात है।
तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो इन सब चीजों की चाबी है एक तरह से।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि कुस्तांदी की नज़र से समझें कि दिमाग आखिर काम कैसे करता है और कैसे हमारी रोज की जिंदगी, हमारे अनुभव, छोटी बड़ी हर चीज इसे लगातार नया रूप देती रहती है।
हाँ, एक तरह से अपने दिमाग के आर्किटेक्ट हम खुद हैं,
है ना? चलिए, शुरू करने से पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। मोहब कुस्तांदी।
हाँ, मोहब कुस्तांदी ये कोई बस यूं ही लिखने वाले साइंस राइटर नहीं है, वो खुद एक ट्रेन्ड न्यूरोसाइंटिस्ट हैं।
अच्छा।
हाँ, उनको मॉलिक्यूलर और डेवलपमेंटल न्यूरोबायोलॉजी की बहुत गहरी समझ है। मतलब दिमाग के अणु कैसे काम करते हैं और बचपन से दिमाग कैसे विकसित होता है, इन सब चीज़ों की।
अरे वाह, मतलब उनकी बैकग्राउंड काफी सॉलिड है। पीएचडी, रिसर्च का अनुभव, और वो लिखते भी तो बड़े नामी पब्लिकेशंस के लिए हैं, जैसे गार्डियन, नेचर।
बिल्कुल, द गार्डियन, नेचर, साइंटिफिक अमेरिकन, ये दिखाता है कि वो अपने विषय को कितना अंदर तक जानते हैं।
और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है?
उनकी खूबी ये है कि वो इतने मुश्किल, कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक आइडियाज को हम जैसे आम लोगों के लिए बड़ा आसान और दिलचस्प बना देती हैं।
हाँ, ये बड़ी बात है।
उन्होंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा नहीं है, उन्होंने लैब में इस पर काम किया है, इसे जिया है। तो जब वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करती हैं तो उसमें एक सच्चाई होती है, एक बैलेंस होता है, वो विज्ञान को कहानी जैसा बना देती हैं।
तो आते हैं किताब पर। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मेन आइडिया क्या है? मतलब सबसे बड़ी बात जो ये किताब कहती है।
सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये उस पुरानी सोच को तोड़ती है जो सदियों से चली आ रही थी कि भाई एक उम्र के बाद दिमाग बदलना बंद कर देता है।
हाँ, जैसे कोई मशीन पुरानी हो गई, अब उसमें कुछ नया नहीं हो सकता।
बिल्कुल, कुस्तांदी कहती है ये सोच सरासर गलत है। दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो तो गीली मिट्टी जैसा है जिस पर जिंदगी के अनुभव लगातार अपने निशान छोड़ते हैं, नए रास्ते बनाते हैं।
वाह।
और इसी कमाल की क्षमता को वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती हैं, और
हाँ,
यही वो चीज है जिससे हम सीखते हैं, यादें बनाते हैं, एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ते हैं, चोट से उभरते हैं।
मतलब हमारे अनुभव सचमुच दिमाग के तारों को बदल देते हैं, फिजिकली।
हाँ, फिजिकली, यही तो किताब का निचोड़ है। ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है।
कैसा सफर?
पहले वो इतिहास बताती हैं कि कैसे वैज्ञानिकों की सोच बदली, कैसे वो फिक्स्ड ब्रेन वाले आइडिया से आगे बढ़े।
अच्छा,
फिर हम इसके पीछे के साइंस में जाते हैं, ये बदलाव होता कैसे है आणविक स्तर पर, सिनेप्स क्या हैं, LTP LTD क्या बला है।
ये LTP LTD क्या है, इस पर आएंगे हम।
हाँ बिल्कुल, और आखिर में हम देखते हैं कि इस सब का हमारी पूरी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, बचपन से बुढ़ापे तक, सीखने में, ठीक होने में। और हाँ, इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, जैसे लत लगना।
मतलब ये हमेशा अच्छा ही नहीं होता।
नहीं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो पुरानी सोच थी कि वयस्क दिमाग बदल नहीं सकता, ये आई कहाँ से थी?
हाँ, ये तो बहुत लंबे समय तक मानी जाती रही है ना। सेंटियागो रामोन इकाहाल, जिन्हें मॉडर्न न्यूरोसाइंस का पितामह कहते हैं।
हाँ, उनका भी यही मानना था कि वयस्क नर्वस सिस्टम के सर्किट्स फिक्स्ड होते हैं।
पर कुछ लोग थे जिन्होंने शायद पहले सोचा होगा कि ऐसा नहीं है।
हाँ, कुछ शुरुआती विचारक थे जैसे विलियम जेम्स, उन्होंने अंदाजा लगाया था कि शायद आदतें दिमाग में कोई फिजिकल रास्ता बनाती होंगी, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं था।
फिर वो चूहों वाले प्रयोग हुए, मार्क रोजेनज़्वेग के।
बिल्कुल, वो बड़े मशहूर प्रयोग थे। कुछ चूहों को रखा एकदम खाली पिंजरे में और कुछ को ऐसे माहौल में जहाँ खूब सारे खिलौने थे, दूसरे चूहे थे, मतलब बहुत उत्तेजना थी।
हाँ हाँ याद आया।
और नतीजा, जिन चूहों को वो समृद्ध माहौल मिला उनके दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाकई में मोटा हो गया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया।
सच में? सिर्फ माहौल बदलने से?
हाँ, ये पहला बड़ा सबूत था कि अनुभव दिमाग की फिजिकल बनावट बदल सकता है। और फिर जब बाद में पता चला कि वयस्क दिमाग में भी नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं।
क्या? वयस्क दिमाग में नए न्यूरॉन्स?
हाँ, एडल्ट न्यूरोजेनेसिस। तब तो पुरानी सोच की बुनियाद ही हिल गई।
कमाल है। तो ये बदलाव होता कैसे? मतलब अंदर क्या चल रहा होता है दिमाग में?
देखिए, इसका राज छिपा है सिनैप्स में।
सिनैप्स? वो क्या होते हैं?
सिनैप्स वो जगह होती है, एक छोटा सा गैप जहां दो न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, सिग्नल भेजती हैं, बात करती हैं।
अच्छा, कनेक्शन पॉइंट जैसा?
बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा मशहूर सिद्धांत काम करता है, डोनाल्ड हेप का। उन्होंने कहा था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर।
फायर टुगेदर वायर टुगेदर मतलब?
मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ बार बार एक्टिव होते हैं, बार बार एक साथ फायर करते हैं, उनके बीच का कनेक्शन, उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है, वो आपस में ज्यादा अच्छे से जुड़ जाते हैं।
अच्छा, जैसे दो लोग साथ काम करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये कनेक्शन मजबूत या कमजोर कैसे होते हैं, इसके लिए दो जरूरी प्रक्रियाएं हैं।
कौन सी?
एक है LTP यानी लॉन्ग टर्म पोटेंसिएशन।
लॉन्ग टर्म पोटेंसिएशन?
हाँ, जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो जो न्यूरॉन्स उस काम में लगे होते हैं उनके बीच का सिनैप्टिक कनेक्शंस ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा मजबूत हो जाता है, सिग्नल आसानी से पास होता है। यही सीखने और याददाश्त बनाने का आधार है।
अच्छा, तो ये LTP सीखने के लिए जरूरी है। और दूसरी प्रक्रिया?
वो है LTD यानी लॉन्ग टर्म डिप्रेशन।
डिप्रेशन?
हाँ, पर ये उदासी वाला डिप्रेशन नहीं है, ये LTP का उल्टा है। जब न्यूरॉन्स के बीच का कोई कनेक्शन कम इस्तेमाल होता है या गैर जरूरी हो जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, लेस सेंसिटिव हो जाता है।
तो ये क्यों जरूरी है कमजोर करना?
ये भी बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर सारे कनेक्शंस सिर्फ मजबूत ही होते जाते तो दिमाग में कितनी गड़बड़ हो जाती। LTD हमें पुरानी, अब काम की नहीं रही जानकारी को भूलने में मदद करता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके।
अरे वाह, मतलब दिमाग खुद ही सफाई भी करता रहता है, फालतू चीजें डिलीट करता है।
बिल्कुल, ये दिमाग के सर्किट को फाइन ट्यून करता है, उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाता है।
ये तो बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। और बचपन में? कहते हैं बचपन में दिमाग बहुत तेजी से बदलता है।
ओह, बचपन और किशोरावस्था तो दिमाग के लिए जैसे एक निर्माण स्थल होते हैं। शुरू में दिमाग जरूरत से ज्यादा कनेक्शन बना लेता है, एक तरह का ओवर प्रोडक्शन।
जरूरत से ज्यादा क्यों?
ताकि बाद में अनुभव के आधार पर जो सबसे काम के कनेक्शंस हैं उन्हें रखा जा सके और बाकी की छंटाई, प्रूनिंग की जा सके, जैसे माली फालतू टहनियां काट देता है ना।
हाँ हाँ,
वैसे ही। और यहीं पर क्रिटिकल पीरियड्स या संवेदनशील अवधियों का कॉन्सेप्ट आता है।
क्रिटिकल पीरियड्स मतलब वो खास टाइम जब दिमाग को सीखने के लिए एकदम तैयार होता है।
बिल्कुल, जैसे भाषा सीखना, बचपन में कितनी आसानी से सीख लेते हैं।
हाँ, वो तो है।
हबल और वीजल के वो बिल्ली के बच्चों पर किए गए प्रयोग बहुत मशहूर हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर बिल्ली के बच्चे की एक आंख को जिंदगी के बिल्कुल शुरुआती क्रिटिकल पीरियड में ढक दिया जाए
तो
उस आंख से जुड़े दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स के हिस्से ठीक से विकसित ही नहीं हो पाते, भले ही बाद में आप पट्टी हटा दें। ये दिखाता है कि दिमाग को सही तरह से बनने के लिए सही टाइम पर सही अनुभव मिलना कितना जरूरी है। अनुभव सिर्फ दिमाग पर असर नहीं डालते, वो उसे गढ़ते हैं, बनाते हैं।
तो ये तो हुई बचपन की बात। वयस्क होने के बाद क्या ये सब रुक जाता है या कम हो जाता है?
यही तो सबसे क्रांतिकारी बात है कुस्तांदी की किताब की, कि नहीं, वयस्कता में भी प्लास्टिसिटी पूरी तरह जारी रहती है।
पूरी तरह?
हाँ, जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं या कोई नई आदत डालते हैं, ये सब प्लास्टिसिटी की वजह से ही मुमकिन है।
इसका कोई उदाहरण है, मतलब असल जिंदगी में?
अरे, वो लंदन के टैक्सी ड्राइवरों वाला अध्ययन याद है? वो तो क्लासिक है।
हाँ, जिन्हें वो द नॉलेज पास करना होता है, लंदन की हजारों गलियों का नक्शा जुबानी याद करना पड़ता है।
बिल्कुल। और रिसर्च में क्या पाया गया कि जिन ड्राइवरों ने मुश्किल ट्रेनिंग पास कर ली थी उनके दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस,
जो याददाश्त और नेविगेशन के लिए जरूरी है,
हाँ, उसका पिछला हिस्सा उन लोगों के मुकाबले काफी बड़ा था जिन्होंने यह ट्रेनिंग नहीं ली थी या फेल हो गए थे।
सिर्फ रास्ता याद रखने से दिमाग का हिस्सा बड़ा हो गया फिजिकली?
हाँ, फिजिकली बड़ा हो गया। ये दिखाता है कि मानसिक मेहनत, मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग की संरचना बदल सकती है।
ये तो अविश्वसनीय है,
है ना? और भी उदाहरण है, जैसे म्यूजिशियंस के दिमाग में ऑडिटरी, सुनने वाले, और मोटर, उंगलियां चलाने वाले कॉर्टेक्स के हिस्से ज्यादा बड़े और विकसित होते हैं।
अच्छा,
जो लोग कई भाषाएं बोलते हैं उनके दिमाग में भी ऐसे बदलाव देखे गए हैं। ये सब यही साबित करता है कि सीखना और बदलना किसी भी उम्र में संभव है। दिमाग लगातार विकसित होता रहता है।
लेकिन आपने पहले इशारा किया था कि ये बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता।
हाँ,
इसका कोई नेगेटिव साइड भी है?
हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। कोस्तांदी इसे कहती हैं मैल अडैप्टिव प्लास्टिसिटी।
मैल अडैप्टिव मतलब जो अनुकूल ना हो, कुअनुकूली।
बिल्कुल, यानी दिमाग की यही बदलने की क्षमता जब गलत दिशा में काम करने लगे, जब वो ऐसे बदलाव करे जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हों।
अच्छा, जैसे कि?
सबसे बड़ा उदाहरण है लत, एडिक्शन, ड्रग्स, शराब या कोई भी नशीली चीज। वो दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को, इनाम वाले रास्ते को हाईजैक कर लेती है।
हाईजैक?
हाँ, वो उस सर्किट में इतने पक्के, इतने मजबूत गलत कनेक्शंस बना देती है कि दिमाग सिर्फ वो ही चीज मांगता है, बाकी सब भूल जाता है। ये भी प्लास्टिसिटी है, लेकिन नेगेटिव। दिमाग ने गलत चीज सीख ली है।
ये तो डरावना है। और वो फैंटम लिम्ब पेन वाला उदाहरण, जिसमें किसी का हाथ या पैर कट जाने के बाद भी उसमें दर्द होता है?
हाँ, वो भी मैल अडैप्टिव प्लास्टिसिटी का एक क्लासिक उदाहरण है। दिमाग का जो हिस्सा उस कटे हुए अंग से सिग्नल लेता था वो अब खाली हो गया। तो आसपास के न्यूरल इलाके, जैसे चेहरे या शरीर के दूसरे हिस्सों को कंट्रोल करने वाले, उस खाली जगह पर एक तरह से कब्जा कर लेते हैं। नतीजा, चेहरे को छूने पर भी उस कटे हुए मौजूद ना होने वाले अंग में दर्द या सनसनी महसूस हो सकती है।
बाप रे।
क्रॉनिक पेन यानी पुराना दर्द जो चोट ठीक होने के बाद भी बना रहता है, या टिनिटिस कान में आवाजें आना, ये भी कई बार दिमाग के गलत तरीके से रीवायर होने के नतीजे हो सकते हैं। दर्द के रास्ते जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं।
तो ये तो वाकई सिक्के का दूसरा पहलू है, लेकिन क्या उम्मीद भी है? मतलब अगर चोट लग जाए, जैसे स्ट्रोक, तो क्या प्लास्टिसिटी मदद कर सकती है?
हाँ बिल्कुल, और यहीं पर प्लास्टिसिटी की असली ताकत और उम्मीद दिखती है। जब दिमाग को चोट लगती है, जैसे स्ट्रोक से कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो दिमाग हार नहीं मानता।
वो क्या करता है?
वो खुद को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। जो स्वस्थ हिस्से होते हैं वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हिस्से के कुछ काम संभालने की कोशिश करते हैं। इसे फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
अच्छा, तो मतलब दिमाग रास्ता निकाल लेता है?
हाँ, काफी हद तक। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके कई तरह की थेरेपी बनाई गई हैं।
जैसे?
मैंने स्ट्रोक के मरीजों के लिए किसी खास थेरेपी के बारे में सुना था। हाँ, शायद आप कंस्ट्रेंड इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी की बात कर रहे हैं।
CIMT, वो क्या है?
इसमें स्ट्रोक के बाद मरीज का जो हाथ ठीक होता है उसे कुछ घंटों के लिए बांध दिया जाता है।
एक हाथ को? क्यों?
ताकि मरीज मजबूर होकर अपने कमजोर या प्रभावित हाथ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे रोजमर्रा के कामों के लिए।
अच्छा, जबरदस्ती?
हाँ, एक तरह से। और इस जबरदस्त फोकस्ड प्रैक्टिस से होता क्या है, दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में जो हरकत को कंट्रोल करता है उसमें बड़े बदलाव आते हैं, नए रास्ते बनते हैं, पुराने मजबूत होते हैं और धीरे धीरे प्रभावित हाथ की हरकत वापस आने लगती है।
कमाल है, मतलब प्रैक्टिस से दिमाग रीवायर हो जाता है।
बिल्कुल, और पॉल बाकवायरीटा का सेंसरी सब्स्टिट्यूशन वाला काम भी अद्भुत है। उन्होंने दिखाया कि अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो दूसरी इंद्रियों जैसे त्वचा या जीभ के जरिए भी दिमाग विजुअल जानकारी प्रोसेस करना सीख सकता है।
जीभ के जरिए देखना?
हाँ, एक डिवाइस के जरिए जीभ पर पैटर्न बनाकर। ये दिखाता है कि दिमाग कितना ज्यादा लचीला और अनुकूलनशील है।
इस पूरी बातचीत से एक बात तो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई है कि भाई दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। ये शायद सबसे बड़ा टेक अवे।
बिल्कुल, ये न्यूरोसाइंस की दुनिया में क्रांति जैसा है। दिमाग स्थिर नहीं, गतिशील है, डायनामिक है।
और दूसरा बड़ा संदेश ये है कि इसे बदलता कौन है?
हम खुद, हमारे अनुभव, हमारे काम, हमारा माहौल, हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो सब हमारे न्यूरल आर्किटेक्चर को, दिमाग की बनावट को शेप देता है।
तो जब हम भारत में कोई नया हुनर सीखते हैं या कोई नई भाषा या मान लीजिए ध्यान लगाना सीखते हैं,
तो हम सचमुच फिजिकली अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। हम अपने दिमाग के मूर्तिकार हैं।
और ये मूर्तिकारी किसी उम्र तक सीमित नहीं है।
नहीं, यही तीसरी बड़ी बात है। प्लास्टिसिटी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना, बदलना, ढलना, यह हमेशा संभव है। ये उम्र बढ़ने को लेकर हमारी सोच बदल सकता है।
लेकिन चौथी बात वो सावधानी वाली है।
हाँ, कि ये दोधारी तलवार है। जो क्षमता हमें सीखने और ठीक होने में मदद करती है, वही हमें लत या पुराने दर्द जैसी चीजों में फंसा भी सकती है।
तो हमें अपने अनुभवों और आदतों को लेकर ज्यादा सचेत रहना होगा।
बिल्कुल। और पांचवी बात जो इसी से जुड़ी है,
वो इस्तेमाल करो या गंवाओ, यूज इट और लूज इट।
हाँ, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये दिमाग का एक न्यूरोलॉजिकल नियम है। दिमाग उन्हीं रास्तों को, उन्हीं स्किल्स को मजबूत करता है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जिन पर हम चलते नहीं, वो रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। कोस्तांदी की किताब में जरूर ऐसी कई बातें होंगी जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, कई यादगार विचार हैं। जैसे वो कहती हैं कि दिमाग हार्ड वायर्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट वायर्ड है।
सॉफ्ट वायर्ड, हाँ, ये शब्द ही कितना कुछ कह देता है। लचीला, बदलने वाला।
बिल्कुल, एक फिक्स मशीन नहीं, एक जिंदा बदलने वाला सिस्टम।
और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हर अनुभव, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ता है।
हाँ, जैसे कोई कारीगर मिट्टी पर लगातार काम करता रहता है, उसे नया रूप देता रहता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव भी कितने मायने रखते हैं।
वो दोधारी तलवार वाली बात भी, कि जो चीज हमें बनाती है वही हमें बिगाड़ भी सकती है।
हाँ, ये थोड़ा गंभीर है पर जरूरी है। प्लास्टिसिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी।
और आखिर में वो इस्तेमाल करो या गवाओ वाला नियम, ये दिखाता है कि दिमाग कितना प्रैक्टिकल है।
बिल्कुल, वो उन्हीं चीजों में एनर्जी लगाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना समय और ध्यान कहाँ लगा रहे हैं।
तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें इसका?
देखिए, सबसे पहला फायदा तो पर्सनल ग्रोथ और सीखने में है। ये जानना कि मेहनत करने से, ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करने से, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, दिमाग सच में बदलता है।
हाँ, ये बड़ी प्रेरणा देता है।
बिल्कुल, अगर कोई नई भाषा सीखनी है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना है या कोई भी स्किल, तो ये ज्ञान हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, ये संभव है, बस लगे रहना है।
और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं?
ओ, बहुत तरीकों से। टीचर्स ऐसे लर्निंग एनवायरमेंट बना सकते हैं जो दिमाग को चुनौती दे, उसे उत्तेजित करे, सिर्फ रटाने की बजाय।
एक्टिव लर्निंग?
हाँ, एक्टिव रिकॉल, यानी बच्चों को याद करने की कोशिश करने देना, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने देना, अलग अलग तरीकों से चीजों को एक्सप्लोर करने देना, ये सब दिमाग के कनेक्शन को मजबूत करता है।
और सेहत के मामले में, जैसे आपने बताया, चोट से उभरने में।
हाँ, रिहैबिलिटेशन में तो प्लास्टिसिटी का सिद्धांत ही सब कुछ है। स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी के बाद जो थेरेपी होती है, वो इसी उम्मीद पर आधारित है कि दिमाग खुद को रीवायर कर सकता है।
और मेंटल हेल्थ के लिए?
हाँ, आजकल इस पर बहुत रिसर्च हो रही है, जैसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे दिमाग की संरचना और काम करने के तरीके को बदल सकती है, तनाव कम कर सकती है।
और व्यायाम, एक्सरसाइज का भी तो असर होता है?
बिल्कुल, एक्सरसाइज से BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ और सिनेप्स बनाने में मदद करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी दिमाग के लिए बहुत जरूरी है।
और वो बुरी आदतें छोड़ना, उसमें ये ज्ञान कैसे मदद करता है?
ये समझने में मदद करता है कि आदतें दिमाग में बने मजबूत रास्ते हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल क्यों है और उन्हें तोड़ने के लिए क्या करना होगा।
मतलब पुराने रास्तों को कमजोर करना होगा।
हाँ, और नए ज्यादा सेहतमंद रास्ते बनाने और उन्हें मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। ये एक तरह की न्यूरल रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें समय और लगातार कोशिश लगती है।
तो अगर इस पूरी चर्चा से एक सबसे बड़ी सीख लेकर जानी हो तो वो क्या होगी?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे दिमाग में बदलाव की जो ये अविश्वसनीय क्षमता है, ये हमें अपने जीवन और अपने विकास को दिशा देने की ताकत देती है। हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम बदल सकते हैं।
हाँ, ये एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये अपने आप नहीं होता है ना।
बिल्कुल नहीं, प्लास्टिसिटी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये मेहनत मांगती है, लगातार जानबूझकर किया गया प्रयास। दिमाग हमारे इरादों पर नहीं, हमारे एक्शन पर रिस्पॉन्ड करता है।
मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो शायद ये जानना था कि वयस्क दिमाग भी नए न्यूरॉन्स बना सकता है, और हाँ, प्लास्टिसिटी का वो नेगेटिव पहलू भी सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, अडल्ट न्यूरोजेनेसिस वाकई कमाल की खोज है, और वो नेगेटिव पहलू हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और आदतों का ध्यान रखना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर ये ज्ञान हमें एक तरह से सशक्त बनाता है। हम अपने दिमाग के स्वास्थ्य और विकास के सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं।
सही कहा, ये हमें अपनी क्षमताओं को लेकर ज्यादा उम्मीद देता है, और साथ ही ये भी समझाता है कि क्यों कुछ बुरी आदतें या पैटर्न इतने जिद्दी होते हैं। ये हमें अपने दिमाग की बेहतर देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत हैं एकत्र फाउंडेशन द्वारा।